दिन भर 19 जून दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदर। राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद बने एनडीए के प्रत्याशी।
राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है।
उत्तरी बंगाल में दार्जिलिंग में बेमियादी बंद का आज पांचवा दिन, आज भी कई जगह विरोध प्रदर्शन।
गोरखालैंड का मूवमेंट जो है 1907 से चल रहा है, लेकिन जब 1986 से ये तीव्र गति पकड़ के रखा हुआ है, और तब से लेकर आज तक गोरखालैंड का मुद्दा, अलग राज्य का मुद्दा, वो चल रहा है।
जिक्र होगा लंदन में एक मस्जिद के बाहर हुई आतंकी घटना का, और होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर रामनाथ कोविंद के नाम की घोषणा की है। रामनाथ कोविंद फिलहाल बिहार के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के दलित नेता रामनाथ कोविंद दो बार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। वे सरकारी वकील थे और दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 16 साल तक प्रैक्टिस करते रहे। राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई को होना है। कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी ने बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर रामनाथ कोविंद के नाम के ऐलान को एक तरफा फैसला बताया है। ये सभी दल 22 जून को अपनी रणनीति पर चर्चा के लिए बैठक करने वाले हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने काबुल में भारत अफगानिस्तान के बीच नई मालवाहक विमान सेवा की शुरुआत की है। इसके जरिए दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं। अफगानिस्तान कालीनों और सूखे मेवों के निर्यात में बढ़ोतरी चाहता है, वहीं भारत भी मध्य एशिया में अपने संपर्क मजबूत बनाना चाहता है। विश्लेषकों का कहना है कि काबुल और दिल्ली के बीच ये सेवा अभी सीमित है, लेकिन भविष्य में पाकिस्तान के जरिए उन जमीनी रास्तों तक इसके विस्तार की योजना है जो फिलहाल राजनीतिक तनाव के कारण बंद हैं। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की विदाई के लिए ब्रसल्स में औपचारिक बातचीत शुरू हो चुकी है। यूरोपीय संघ की तरफ से बातचीत की कमान संभाल रहे मिशेल मार्नियर ने कहा कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के फैसले से पैदा हुई अस्थिरता पर बातचीत उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं ब्रिटेन की तरफ से वार्ता की अगुवाई कर रहे डेविड डेविस ने कहा कि ब्रिटेन मजबूत और खास साझेदारी के लिए बातचीत करेगा। वहीं बर्लिन में जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने साफ कर दिया है कि यूरोपीय संघ के बाकी सदस्यों के हित उनकी प्राथमिकता है। हमारी गाइडलाइन समान है, हमारी प्राथमिकता बाकी 27 सदस्यों की एकता हमारी प्राथमिकता है। हम ब्रिटेन की इच्छाओं को ध्यान से सुनेंगे और आपसी समझ बनाने के लिए अपने हितों पर भी बहस करेंगे, लेकिन अभी ये कयास लगाना काफ़ी जल्दबाजी होगी कि क्या नतीजा आएगा, लेकिन हम एक अच्छे नतीजे की उम्मीद करते हैं। ये थे एंगेला मर्केल के शब्द। ब्रेक्सिट पर यह बातचीत मार्च 2019 में खत्म होनी है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पुर्तगाल के मध्य हिस्से में जंगलों में लगी भीषण आग से अभी भी आपात सेवा कर्मी जूझ रहे हैं और लोगों को सुरक्षित निकालने के काम जारी है। हल्की बारिश के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। लेरिया जिले में आग बुझाने के लिए करीब 900 फायर फाइटर लगाए गए हैं। यहां कम से कम 62 लोगों की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि शनिवार को बिजली कड़कने की वजह से ये आग शुरू हुई थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमरीका से सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और एकतरफा कार्रवाई से बचने को कहा है। रविवार को एक अमरीकी लड़ाकू विमान ने सीरियाई लड़ाकू विमान को मार गिराया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि सीरियाई विमान ने रक्का में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से लड़ रहे सुरक्षा बलों पर बम गिराए थे, जिसके बाद नियम के अनुसार सीरियाई विमान को गिराया गया था। आईएस से रक्का में लड़ रहे अमरीका समर्थित सुरक्षा बलों ने भी सीरियाई सरकार पर बमबारी करवाने का आरोप लगाया है। सर्गेई लावरोव ने कहा,
हम अमेरिका और अन्य देशों से जिनकी सेनाएं और सलाहकार जमीन पर काम कर रहे हैं संयोजित होकर काम करने की अपील करते हैं। जहां पर लड़ाई धीमी है, इस दिशा में प्रगति की उम्मीद की जा सकती है। हम सभी से एक तरफा कार्रवाई नहीं करने की अपील करते हैं। ये थे सर्गेई लावरोव के शब्द। नाइजीरिया में पुलिस के मुताबिक 5 महिला फिदायीन हमलावरों ने बोर्नो राज्य में हमला किया है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है और 11 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये हमला मैदुगुरी के पास हुआ था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामनाथ कोविंद को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति पद के लिए जितने नामों पर पिछले कुछ महीनों से माथापच्ची चल रही थी, उनसे अलग एक नाम देकर मोदी ने एक बार फिर लोगों को चौंका दिया है। और ये नाम है बिहार के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के नेता रामनाथ कोविंद का। कोविंद कम बोलने वाले शालीन चेहरे हैं, विवादों से उनका नाता न के बराबर रहा है। वो दलित हैं और उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से आते हैं। सुनिए जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
रामनाथ कोविंद की पहचान एक दलित चेहरे के रूप में अहम रही है। उनकी उम्मीदवारी का ऐलान आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया।
राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है।
रामनाथ कोविंद इस समय बिहार के राज्यपाल हैं। राष्ट्रपति पद के दौड़ में उनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं था। उनके बारे में जानकारी देते हुए खुद अमित शाह कहते हैं,
मैं रामनाथ जी का परिचय भी आपको देना चाहूँगा। रामनाथ जी हमारे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। अभी वो गवर्नर बिहार हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिला के परोख गांव के मूल निवासी है। दलित समाज से संघर्ष कर अपनी राजनीतिक करियर में इतने ऊंचे मकाम तक अब तक पहुंचे हैं।
पेशे से वो वकील रह चुके हैं और दो बार सांसद भी। अगर वो राष्ट्रपति चुन लिए गए तो वो दूसरे दलित राष्ट्रपति होंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं कि दलित को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना केवल दिखावा है।
एक दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए नामित किया जा रहा है। सभी जानते हैं राष्ट्रपति भारतवर्ष में एक सेरेमोनियल, जब सब सर्वोपरि सर्वोच्च पोजीशन हो सकती है, लेकिन वह काम किस पर करता है? कैबिनेट के मसौदे पर ही वो काम करता है, उसके सजेशन पे काम करता है। क्या उसका प्रतीकात्मक रिप्रेजेंटेशन होगा या इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होगा? लड़ाई यहाँ पर फिर से आकर रुक जाएगी कि उसका इफेक्टिव नहीं है, उसका केवल नॉमिनल है।
शायद इससे मनोबल बढ़े, एक पैगाम जाए दलित समाज में।
मनोबल बढ़ता तो क्या नारायणन को किया गया था नामित, उसका क्या हुआ? उसके पहले आपने स्पीकर भी देखा होगा कि मीरा कुमार स्पीकर भी थी। हमारे जज भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी दलित रह चुके हैं। लेकिन क्या सचमुच वो निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं? किसी को एक भी कानून के तहत उन्होंने सजा दिलवा दी? हमारा आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है शेड्यूल कास्ट कमीशन भी है, कमिश्नर भी है, क्या वो बोल रहा है?
सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता अनिल चमड़िया के अनुसार पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। KR नारायणन भी उनके मुताबिक एक दलित राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन दलितों का क्या हुआ? उनका कहना था,
पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ। KR नारायणन भी थे और KR नारायणन को भी इसी रूप में हाईलाइट किया गया था, बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस जब बनाए गए थे उनको भी यही कहा गया कि अब तो दलित भी चीफ जस्टिस हो गया। एक आदमी के यदि बनने से समाज व्यवस्था बदल जाती तब तो ये काम बहुत पहले हो चुका होता।
रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुआ था। कोविंद ने कानपुर यूनिवर्सिटी से BCom और LLB की पढ़ाई की है। 1994 में कोविंद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए। वो 12 साल तक राज्यसभा सांसद रहे और कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
हमारे साथी प्रदीप कुमार ने वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय से संपर्क किया और उनसे पूछा कि कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुने जाने की उम्मीद थी आपको?
ये चौंकाने वाला फैसला है। जो नाम पिछले 1.5-2 महीने से चल रहे थे उसमें मेरी जानकारी में कहीं से भी, खास करके मीडिया में, रामनाथ कोविंद का नाम नहीं था। जो नाम चल रहे थे उसमें दो तरह के की अटकलें लगाई जा रही थी। एक तो ये कि दक्षिण भारत से कोई नाम होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में अपना पांव पसारना चाहती है। लेकिन और दक्षिण भारत से एक पत्रिका ने तो ये भी लिखा कि दो नाम में से कोई एक हो सकता है, नारायण मूर्ति या अजीज प्रेम जी। बीजेपी के भीतर भी, जैसे कल की ही बात है, एक विवाह में बीजेपी के कई नेता मिले तो उनके अपने अनुमान थे, उसमें भी रामनाथ कोविंद का नाम कहीं नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये बात कई लोग कहते हुए पाए गए कि अमित शाह ने ये बहुत पहले नेताओं को स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी जो अपने पद पर है उसमें से किसी का चयन नहीं होगा। तो एक तरह से ये मान लिया गया था कि केंद्र में मंत्रियों में जो वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, ये तीन के नाम लिए जा रहे थे, और राज्यपाल में जो नाम सबसे पहले, कई महीने की बात है, जो नाम उभर कर आया था वो था राम नाईक का।
ये बात है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जो है वो पार्टी के अंदर तमाम चौंकाने वाले फैसले लेती रही है पिछले दिनों में, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस आदमी का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था चर्चा में, तो अचानक से कोविंद जी को, और ये पद पे भी थे,
ये जो नाम घोषित हुआ है
जी,
उसके निर्णय के पीछे जो सोच विचार चला होगा वो ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी के बनने के बाद वहाँ जातीय संघर्ष शुरू हुआ है, और जो जातीय संघर्ष शुरू हुआ है वो राजपूत वर्सेस दलित का है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश को संभालने, बाबा साहब अंबेडकर को पुनः स्थापित करने के का कोई अवसर छोड़ते नहीं, तो ये वो भी कारण रहा होगा।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
पुलिस लंदन में एक मस्जिद के बाहर हुई एक आतंकी घटना की जांच कर रही है। सोमवार सुबह फिंसबरी पार्क मस्जिद के पास एक वैन मुसलमानों की भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये मस्जिद उत्तरी लंदन में है। वैन के 48 वर्षीय ड्राइवर को वहां मौजूद लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 8 मिनट के भीतर ही इसे आतंकी घटना करार दे दिया था। पूरे ब्यूरो के साथ लंदन से पवन सिंह अतुल।
पिछले कुछ महीनों में लंदन में आपात सेवाओं और पुलिस बल को कई बार ऐसे हालात से दो चार होना पड़ा है। यह घटना सोमवार को रात के करीब 12:20 पर मुस्लिम वेलफेयर हाउस के बाहर हुई। रमजान की वजह से सड़कों पर भीड़ थी। कुछ लोग एक बुजुर्ग की मदद कर रहे थे क्योंकि वो जमीन पर गिर गए थे। तभी एक सफेद वैन आई और फुटपाथ पर चल रहे लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। जैसे ही वैन रुकी, कुछ साहसी लोग वैन के ड्राइवर की ओर बढ़े। उन्हीं में से एक थे अब्दुल रहमान।
वो कह रहा था कि मैं और मुसलमानों को मारना चाहता हूँ। बहुत से लोग उसकी ओर लपके, मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया और जब तक पुलिस नहीं आई उसे वैसे ही दबोचे रखा।
कुछ घंटों के भीतर ही मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन ने बयान जारी कर कहा कि वैन को जानबूझकर मुसलमानों पर चढ़ाया गया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा कि पुलिस के शुरुआती आकलन के अनुसार हमलावर अकेला था।
हमने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। पुलिस मस्जिदों की सुरक्षा जरूरतों का ख्याल रखेगी। ईद से पहले इस आखिरी हफ्ते में जरूरत पड़ने पर उन्हें और सुरक्षा दी जाएगी।
घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय सांसद और लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने बीबीसी को बताया कि लोग डरे हुए हैं।
The stress levels I've met already from people both last...
लोग बेहद तनाव में हैं और वो डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो जाए। हमें बेहतर पुलिस व्यवस्था ही नहीं बल्कि समाज में एक दूसरे की मदद का जज्बा भी पैदा करना चाहिए, क्योंकि यही ऐसी घटनाओं से निपटने का सही तरीका है।
ब्रिटेन के मुसलमान नेताओं का कहना है कि हाल के महीनों में लंदन और मैनचेस्टर में हमलों के बाद मुसलमानों के प्रति भेदभाव बढ़ा है, लेकिन फिंसबरी पार्क मस्जिद के पास जो कुछ हुआ वो महज भेदभाव से कहीं ज्यादा खतरनाक है। पवन सिंह अतुल, बीबीसी लंदन।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। उत्तर बंगाल के पहाड़ी इलाकों में बेमियादी बंद का आज पांचवां दिन है। आज भी दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में आंदोलनकारियों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विदेश चली गई, इसको लेकर भी लोगों में आक्रोश है। आखिर क्यों हो रही है गोरखालैंड की मांग और क्या है इस आंदोलन की पृष्ठभूमि, सुनिए दार्जिलिंग से रवि प्रकाश की खास रिपोर्ट।
हल्की बूंदाबांदी और सिहरन के बावजूद आज भी सैकड़ों लोग दार्जिलिंग के चौक बाजार पर जमा हुए। लोगों ने यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका और गोरखालैंड की मांग के पूरे होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। यहां मेरी मुलाकात हुई प्रमिला भूटिया से। उन्होंने बीबीसी को बताया कि ममता बनर्जी पहाड़ के लोगों का भरोसा खो चुकी हैं। प्रमिला भूटिया ने कहा,
ममता अच्छा नहीं है ये।
क्या चाहते हैं आप लोग?
गोरखालैंड चाहिए, हम लोग को गोरखालैंड चाहिए।
गोरखालैंड की मांग 100 साल से भी अधिक पुरानी है। समय समय पर अलग अलग नेताओं ने अपने स्तर से इसकी मांग रखी है, लेकिन इस आंदोलन को सबसे अधिक चर्चा साल 1986 में तब मिली जब सुभाष घिसिंग ने गोरखालैंड आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। वे गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेता थे। लंबे समय तक चले उनके आंदोलन के दौरान करीब 1500 लोग मारे गए और हिंसा की सैकड़ों घटनाएं हुई। उस दौरान कॉलेज के छात्र रहे वरिष्ठ पत्रकार स्वराज थापा बताते हैं,
गोरखालैंड का मूवमेंट जो है 1907 से चल रहा है, लेकिन जब 1986 से ये तीव्र गति पकड़ के रखा हुआ है और तब से लेकर आज तक गोरखालैंड का मुद्दा, अलग राज्य का मुद्दा, वो चल रहा है।
अब इस आंदोलन का नेतृत्व विमल गुरुंग के हाथ में है। वे सदैव नेता है और उन्होंने सुभाष घिसिंग के नेतृत्व वाले आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। घिसिंग के दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद विमल गुरुंग साल 2007 में उनसे अलग हो गए और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नाम से अपनी पार्टी बना ली। दोनों गोरखा नेताओं के आंदोलन में क्या फर्क है? मेरे इस सवाल पर जाने माने स्तंभकार उपेंद्र मणि प्रधान ने बीबीसी से कहा,
दोनों नेताओं का मुझे लगता है कि सुभाष घिसिंग जी मोर मैच्योर पॉलिटिशियन, उनका एक खूनी आंदोलन था, करीब 1500 से ज्यादा गोरखाओं को मार दिया गया था पश्चिम बंगाल सरकार ने। विमल गुरुंग जी वेरी इनोवेटिव आंदोलन किया था, उन्होंने बिल्कुल ही अहिंसावादी आंदोलन जो गांधी जी के बताए रास्ते पे चल के उन्होंने आंदोलन किया। जैसा आप देखेंगे 2007 से लेकर के 2013 तक जो आंदोलन चला उसमें सिर्फ 4 या 5 लोगों की मौत हुई थी और उसमें मौत तब हुई जब पश्चिम बंगाल सरकार ने गोली चलाई।
दरअसल गोरखा लैंड की लड़ाई सिर्फ गोरखा जाति के लोगों की लड़ाई नहीं है, इसमें दार्जिलिंग हिल्स के सभी लोग शामिल हैं, चाहे वे लेप्चा हों, भूटिया हों या फिर शेरपा। वरिष्ठ साहित्यकार रिंजू टुप्पा कहती हैं कि गोरखा कोई जाति नहीं बल्कि पॉलिटिकल टर्म है। रिंजू टुप्पा ने बीबीसी से कहा,
एक टुप्पा कम्युनिटी से हूँ, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर है, लेकिन टुप्पा होने के साथ मैं अपने आप को गोरखाली मानती हूँ। मैं कोई टुप्पा है, कोई तामंग है, कोई डिफरेंट लेप्चा है। हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिकॉग्नाइज जाति बेस्ड आइडेंटिटी है। ये गोरखा जो है, ये गोरखा हमारे लिए और हमारे ये गोरखालैंड मूवमेंट के लिए एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है।
दार्जिलिंग हिल्स के लोग इस बार के आंदोलन को अंतिम लड़ाई करार दे रहे हैं। वे कहते हैं कि इस बार गोरखालैंड से कम किसी भी शर्त पर समझौता नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बहरहाल दार्जिलिंग हिल्स में कम्प्लीट बंद है। अब यह देखना होगा कि इस बार के आंदोलन से गोरखा समुदाय को क्या हासिल होता है। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए दार्जिलिंग में।
बिहार में 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा के परिवार वालों के मुताबिक शौच के लिए बाहर निकली इस छात्रा के साथ पहले तो दुष्कर्म किया गया और फिर उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। हालांकि अभी छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ये घटना घरों में शौचालयों के न होने के चलते महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा को रेखांकित करती है। पूरी घटना का ब्यौरा दे रही हैं पटना से सीतू तिवारी।
मैंने जब उसे पटना के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देखा तो वो सोई हुई थी। कभी कभी कुछ सवालों के जवाब टूटे फूटे शब्दों में दे देती। उसका बायां हाथ मेहंदी के सुर्ख लाल रंग से खिल रहा था, लेकिन वो बेजान था। उसके शरीर में सूजन थी। 16 साल की इस बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म हुआ है। उसके भाई बताते हैं कि 16 जून के तड़के तकरीबन 2:30 बजे वो शौच के लिए घर से बाहर निकली। जब बच्ची बहुत देर तक घर वापस नहीं आई तो घर वालों को चिंता हुई, उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। इस बीच घर वालों को खबर मिली कि एक बच्ची को क्यूल स्टेशन के पास चलती ट्रेन से फेंक दिया गया है। घर वाले जब वहां पहुंचे तो देखा ये उनकी ही बच्ची थी, जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय स्तर पर इलाज शुरू कराया, लेकिन बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे 17 जून की रात पटना के मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले आए। पीड़ित के भाई बताते हैं,
रिपोर्ट में तो बताया गया लड़की ने, उसको होश आने के बाद उसको पूछा गया तो बताया 6 वो है 6 वो, हम उसको 2 को कहीं चिन्हते हैं।
पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। मामले में गांव के ही मिथुंजय कुमार और संतोष कुमार पर नामजद FIR की गई है। लखीसराय के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने BBC से बात करते हुए कहा कि मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है जबकि दूसरे की तलाश जारी है। वहीं दुष्कर्म की पुष्टि मंगलवार को आने वाली मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी।
मात्र 2 को नियुक्त किया गया है जिसमें एक गिरफ्तारी हुई है, दूसरे के लिए प्रयास किया जा रहा है। जी, तो अनुसंधान हो रहा है उसी बिंदु पर कि बाकी है नहीं है, अनुसंधान में जितनी बातें सही पाई जाएगी उसके आलोक में निर्णय लिया जाएगा।
अगर पीड़िता की हालत की बात करें तो वो स्थिर बताई जा रही है। PMCH अधीक्षक लखिंदर प्रसाद ने बताया,
खतरे से बाहर है, कोई स्थिति क्या है कि उसका मल्टीपल फ्रैक्चर है, उसका पेल्विस थाई फ्रैक्चर है, लाइनिंग में अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है।
उधर स्थानीय मीडिया में ये खबर प्रमुखता से आने के बाद मामले ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोमवार सुबह से ही BJP नेताओं का तांता लगा रहा। पीड़िता से मिलने आए BJP नेता उषा विद्यार्थी ने कहा कि अगर न्याय न मिला तो पार्टी आंदोलन करेगी।
कल दिन भर में अगर इसकी स्थिति नहीं सुधरी तो भारतीय जनता पार्टी हम लोग वहाँ कारगिल चौक के पास भर दिन का अनशन पर बैठेंगे।
घर में शौचालय न होना बिहार में महिलाओं के प्रति हिंसा की बड़ी वजह है। इस मामले में हालांकि अभी तक 10वीं में पढ़ने वाली इस छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बारे में कोई दो राय नहीं कि शौचालयों का घर में ना होना महिलाओं के जीवन में असुरक्षा को बढ़ा रहा है। सीटू तिवारी, BBC पटना।
सोमवार का दिन होता है आपकी चिट्ठियों का। आपके पत्रों के साथ हैं राखी शर्मा और राजेश प्रियदर्शी।
आपकी राय। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं राखी शर्मा और
मैं हूं राजेश प्रियदर्शी आपकी चिट्ठियों के साथ। तो आइए राखी, शुरू करते हैं, क्या लिखते हैं हमारे श्रोता
जी। सबसे पहले चिट्ठी है जंग बहादुर सिंह की गोल पहाड़ी से। श्री वुत्सुल्ला खान जी का पाकिस्तान डायरी इन्होंने सुना, जिसमें उन्होंने क्रिकेट एवं भारत पाक संबंधों को अपने लहजे में श्रोताओं के लिए पेश किया। वुत्सुल्ला जी के इस वाक्य से ये कहते हैं कि पूरी तरह सहमत हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि कल तुम जीते, आज हम जीते, कल कोई और जीतेगा, और दोनों प्रतिद्वंदी मुमालिक खेल को खेल नहीं बल्कि युद्ध में जीत हार के समान लेते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं।
गोल पहाड़ी जमशेदपुर से ये चिट्ठी जंग बहादुर सिंह जी ने लिखी है। वुसत हमेशा से ऐसी चीज़ें पाकिस्तान से लिखते रहे हैं जो भारत और पाकिस्तान दोनों में लोगों को पसंद आती हैं, और आपको ये पसंद आई, इसके लिए आपका शुक्रिया। और बात बिल्कुल सही है कि खेल को खेल ही रहने देना चाहिए।
राजेश जी, दूसरी चिट्ठी है महाराष्ट्र के रत्नागिरी से, जिसे रफीक इब्राहिम परकार लिखते हैं। इनका कहना है कि कल ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर पाकिस्तान के हाथों भारत की क्रिकेट में ऐतिहासिक शिकस्त पर उन्हें 3 जून का इंडिया बोल याद आया, जिसमें मलय नीरव साहब ने बड़े फक्र और इन्होंने लिखा है कि घमंड की बातें करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कटोरा लेकर भीख मांगने की सलाह दी थी और पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर का रास्ता दिखाने की सलाह तक दे डाली थी। उस समय मलय नीरव एक खेल पत्रकार की बजाय संघ परिवार के प्रवक्ता इन्हें लगे।
भारतीय टीम निश्चित तौर पर एक बहुत मजबूत टीम थी और वो जिस तरह से अपना फाइनल मैच हारी है इसका अंदाज़ा बहुत कम लोगों को था, और खेल के विषय को दिलचस्प बनाने के लिए बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग अलग अलग वक्त करते हैं। आपको ऐसा लगा, ये आपकी राय है, और मलय नीरव ने जो कुछ कहा उस वक्त के हालात के हिसाब से उन्होंने कहा होगा, लेकिन जैसा कि आपसे पहले जंग बहादुर सिंह कह रहे थे और हम सब ये समझते हैं कि खेल को खेल भावना के साथ ही लेना चाहिए और उसका उसी तरह से आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ये हार जीत का सिलसिला हमेशा चलता रहता है।
अगला ईमेल है ऋचा जोशी का। ये पूछ रही हैं कि iOS ऐप कब तक आएगी?
सबसे पहले तो रचा जी हमारी महिला श्रोता हैं और उन्होंने पत्र लिखा, उनका स्वागत है और जल्दी ही अगले 2-3 महीनों में हमारा iOS ऐप भी लॉन्च होगा और साथ में जो पुश अलर्ट्स हैं, नोटिफिकेशन है, वो भी हम अगले कुछ महीनों में शुरू करेंगे, जिस पर आप bbchindi.com की सारी सामग्री देख सकेंगे।
अगला ईमेल है राजस्थान के नागौर जिले से जितेंद्र चौधरी का। ये 17 जून के इंडिया बोल का जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं इन्हें बहुत पसंद आया ये कार्यक्रम, किसानों के हितों से जुड़ा उससे बातचीत इसमें पेश की गई थी।
हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोता बीबीसी हिंदी के जो हैं रेडियो के, वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और ये इस वक्त देश का एक बहुत गंभीर और बड़ा मुद्दा है, इसलिए हमने ये इंडिया बोल कार्यक्रम किया। आपको पसंद आया, हमें ये बात अच्छी लगी, आपका बहुत शुक्रिया।
राजेश जी, अगला ईमेल है आज़ाद सिंह का, ये फेफरा उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। इनकी शिकायत है कि बीबीसी के किसी भी प्रसारण का ऑडियो प्ले नहीं हो रहा है, जिससे बीबीसी से इनका संपर्क टूट रहा है। इनका निवेदन है कि मोबाइल ऐप का ऑडियो प्लेयर तुरंत सही किया जाए।
जहां तक हमें मालूम है, बीबीसी हिंदी का जो एंड्रॉयड का मोबाइल ऐप है वो ठीक काम कर रहा है। आप कृपया एक बार ज़रूर चेक करें कि आपके फ़ोन की सेटिंग या नेटवर्क में कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे आपने हमारा ध्यान दिलाया है तो हम खुद भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ ही एक बात आपको मैं याद दिला दूं कि बीबीसी हिंदी का जो शाम का प्रसारण है, उस प्रसारण को आप फेसबुक लाइव के ऑडियो स्ट्रीम के जरिए भी सुन सकते हैं, अगर आपको ऐप के जरिए सुनने में दिक्कत हो रही है तो।
अगली चिट्ठी है जम्मू से, त्रिकुटा नगर से प्रमोद सभ्रवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप बीबीसी हिंदी सर्विस पर सबसे पहला पढ़ा गया समाचार एक बार फिर सुनवा सकते हैं, अगर ऐसा हो तो ये बहुत आभारी रहेंगे।
हमारे पास बहुत सारा आर्काइव है और बहुत सारे प्रसारण हैं। पहला प्रसारण बीबीसी हिंदी का या बीबीसी का अगर ऐसा कोई अवसर हुआ, ऐसा कोई मौका हुआ तो हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे।
अगली चिट्ठी है ककोली से, फैजाबाद उत्तर प्रदेश से। विष्णु वर्मा लिखते हैं, 12 मई का दिन भर में श्री रेहान फजल की प्रस्तुति विवेचना के अंतर्गत 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस, बुद्धिमता और शौर्य के पर्याय भारतीय नौसेना श्री SM नंदा की गौरव गाथा इन्हें बहुत अच्छी लगी, इसके लिए रेहान जी को ये धन्यवाद देते हैं।
आपका धन्यवाद हम जरूर रेहान फजल तक पहुँचा देंगे, बहुत मेहनत से वो ये कार्यक्रम बनाते हैं और आपको पसंद आता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें। एक बार चलते चलते हम आपको अपना पता बता दें, अगर आप डाक से हमें चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब एक नजर डालते हैं खेल समाचारों पर राखी शर्मा के साथ।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं राखी शर्मा। इंग्लैंड में खेले जा रहे हॉकी विश्व लीग सेमीफाइनल टूर्नामेंट में कल पाकिस्तान पर मिली 7-1 की जीत से भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। पूल बी के अपने आखिरी लीग मैच में भारत को अब कल नीदरलैंड का सामना करना है। विश्व नंबर 4 नीदरलैंड टूर्नामेंट की मजबूत टीमों में से एक रही है। इस टूर्नामेंट में अब तक अजय रही भारतीय टीम के मुकाबले पर खेल पत्रकार वी कृष्णा स्वामी कहते हैं,
इस प्रतियोगिता में सबसे जो है हाईएस्ट रैंक टीम जो है वो नेदरलैंड्स है और उसे जैसे यूरोपियन पावर हाउस कहा जाता है, तो उनके खिलाफ जब खेलेगी भारतीय टीम तो वो खेल देखने की जो है हमें जरूरत है, क्योंकि अभी तक जो है भारत ने तीनों मैच में जो है अपने जो है फोकस पे, पहले मैच में स्कॉटलैंड से सिर्फ उन्होंने एक ही क्वार्टर में जो है 4 गोल बाग कर ये दिखाया कि वो उनसे जो है बहुत ही बेहतर है। फिर कनाडा में भी जो है उन्होंने पहले हाफ में 3 गोल किए और उसके बाद स्लो डाउन किया क्योंकि उनको अगले दिन पाकिस्तान के खिलाफ खेलना था, और पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ तो लगातार जो है निरंतर दौर से जो है उन्होंने एक अटैक के बाद दूसरा अटैक बनाते रहे और उसमें जो है 7 गोल दाग दिए।
इससे पहले दोनों टीमें पिछले साल हुए रियो ओलंपिक में भिड़ चुकी हैं, जहां नीदरलैंड्स ने भारत को 2-1 से हराया था। हालांकि 2015 में हुए हॉकी विश्व लीग फाइनल में भारत ने नीदरलैंड्स को शूटआउट में 3-2 से मात दी थी। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर रामनाथ कोविंद के नाम की घोषणा की। विपक्षी दलों ने बताया बीजेपी का एक तरफा फैसला। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की विदाई के लिए ब्रसल्स में औपचारिक बातचीत शुरू हो चुकी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के शॉ एलिजी में एक गाड़ी चलने के बाद पुलिस ऑपरेशन जारी, एक व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने की खबर है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।